श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्य वचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लैव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार मिले। मुझे आशा है कि आप सब प्रभु के वचन की संगति में बढ़ रहे हैं और इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हम सब आजकल लाइव व्यवस्था की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने मेल बलि के विषय में देखा था। आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 4 से आरंभ करेंगे और इसमें हम पाप बलि की विधि के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें देखेंगे कि यह पाप मनुष्य के स्वभाव में ही है। तो आइए हम अपने अध्ययन को आरंभ करें और आज के विषय को देखें। विषय है पाप बलि, अर्थात पाप एक स्वभाव जैसा। मित्रों, यह असुखद सुगंध बलियों में प्रथम है। तीनों सुखदायक सुगंध बलि मसीह को उसके महिमा में चरित्र में निखारती है। दूसरी दो असुखद सुगंध बलि पाप के लिए क्रूस पर किए गए मसीह के कार्यों को दर्शाती है। मित्रों, पाप बलि पाप को स्वाभाविक मानती है और दोष बलि पाप के कार्य को प्रकट करती है। आप जानते हैं कि मानव स्वभाव से ही पापी है और जो कुछ वह कार्य करता है उसी के कारण पापी ठहरता है। वह करता वही है जो पाप है, क्योंकि पाप उसके स्वभाव में है। मित्रों, पाप बलि के अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो उसे दूसरी बलि से अलग करती हैं तथा उसके महत्व को प्रदर्शित करती हैं। इसमें पहला है, यह किसी भी चढ़ावे से विस्तार पूर्वक वर्णित है, क्योंकि दूसरे चार चढ़ावों की अपेक्षा यह दुगुनी है। होम बलि 17 पदों में, अन्न बलि 16 पदों में और मेल बलि 17 पदों में, दोष बलि 19 पदों में और पाप बलि 35 पदों में वर्णित है। स्पष्ट है कि परमेश्वर की आत्मा ने भी इसे बहुत महत्वपूर्ण समझा है। अब दूसरी बात हम देखते हैं, पाप बलि अपने में पूर्णतया नया चढ़ावा है। यहां तक कहीं भी पाप बलि का वर्णन नहीं आया है। धर्मशास्त्र में इसके पहले इसका उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। किसी गैर यहूदी राष्ट्र में भी इस प्रकार की विधि नहीं है। अब तीसरी बात हम देखते हैं, व्यवस्था के दिए जाने के समय से यह सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण चढ़ावा है। आप जानते हैं कि मानव वास्तव में व्यवस्था दिए जाने के पहले से ही पापी है, परंतु व्यवस्था के द्वारा उसे इस बात का स्पष्ट रूप से पता चला कि वह पापी है। पाप बलि सभी पर्वों में चढ़ाई जाती थी, फसह पर्व, पेंतिकोस्त, तुरही व झोपड़ी के पर्व में, प्रायश्चित के महान दिवस योम कीपर पर भी इसका चढ़ावा होता था। अब हम चौथी बात देखते हैं, यह होम बलि के विपरीत था, यद्यपि उसी स्थान पर चढ़ावा चढ़ता था। जिस स्थान में होम बलि पशु बध किया जाता है, उसी में पाप बलि पशु भी यहोवा के सम्मुख बलि किया जाए, वह परम पवित्र है। लेव व्यवस्था की पुस्तक 6 अध्याय उसके 25 पद में हम इसे पाते हैं। मित्रों, जहां होम बलि समाप्त होती है वहां से पाप बलि का आरंभ होता है। होम बलि मसीह कौन है का वर्णन करती है, पाप बलि से मसीह ने क्या किया का बोध होता है। होम बलि में मसीह परमेश्वर द्वारा स्थापित महान और पवित्र आदर्शों की भरी पूर्ति करते हैं, तो पाप बलि द्वारा मानव की गहन और निराशमय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मित्रों, होम बलि में मसीह की बहुमूल्यता तथा पाप बलि में पाप के प्रति उसकी घृणा का आभास देखने को मिलता है। होम बलि व अग्नि बलि स्वेच्छा से दी जाने वाली चढ़ावा है, परंतु पाप बलि के लिए आदेश है। होम बलि ऊपर की ओर उठता है, पाप बलि नीचे उंडेला जाता है। एक ऊपर चढ़ता है, दूसरा नीचे गिरता है। आइए अब हम इसकी रूपरेखा को देखें। असुगंध सुगंध बलि अर्थात चढ़ावे, अध्याय 4 और 5 में, इसके ए में हम देखते हैं पाप बलि, पाप का स्वभाव अध्याय 4 में, और अ में हम देखते हैं अनजाने का पाप पद 1 और 2, ब पुरोहितों के पाप पद 3 से 12, स मंडली का अनजाने में का पाप पद 13 से 21, ड मुखिया अर्थात शासक का पाप पद 22 से 26, क साधारण पाप अर्थात साधारण लोगों का पाप पद 27 से 35, ख पाप बलि के नियम या विधान अध्याय 6 उसके 24 से 30 पद। हम बी में देखते हैं अनजाने का पाप, तो हम यहां पर पढ़ेंगे लय व्यवस्था की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 और 2 पद में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि इसराइलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए। मित्रों, यहां अनजाने में किए गए पापों पर जोर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर हठी होकर कोई पाप करे तो इस चढ़ावे का कोई मतलब नहीं रहता। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था, तो इसे हम इब्रानियों 10 उसके 28 पद में पाते हैं। इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति जानबूझकर यीशु का तिरस्कार या इनकार करता है तो वह उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं तो पापों के लिए कोई बलि शेष नहीं रह जाती। इसे भी हम इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 26 और 27 पद में पढ़ते हैं। मित्रों, अनजाने पापों से एक छिपे सत्य का पता चलता है कि मानव स्वभाव से ही पापी है। मित्रों, मुझे आपको यह बताना जरूरी है और मुझे भी इसे समझना है। यही कारण है कि मानव पापी है। बिना किसी समय व परंपराओं के भेदभाव के भी हम पाप करते हैं। हम उन बातों को करते हैं जो ईश्वर की इच्छा के विपरीत है, क्योंकि स्वाभाविक मनुष्य के लिए कुछ ऐसा करना कठिन है जो ईश्वर को पसंद आए। स्वाभाविक मनुष्य के अंदर इतनी जगह नहीं है, वह स्वभाव से ही पापी है। इन पापों पर मनुष्य का ध्यान आकर्षित करना होगा। पाप बिना किसी भेदभाव के पाप हैं, चाहे जो भी हो उसे करता है। पाप बलि के द्वारा पाप की घोर आशंका होती है और यह दोष सिद्धि जाति वंश के साहित्य में स्पष्ट दृष्टिगोचर है। मनुष्य के भीतर यह अत्यंत गूढ़ दोष की सही जांच होनी चाहिए, तब एक उचित दवा उपयुक्त उपाय भी सुझाना चाहिए अर्थात सुझाना होगा। मित्रों, भजन लेखक को ध्यान से सुने। भजन संहिता 139 उसके 23 और 24 पद में आगे वो कहते हैं, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग पर मेरी अगुवाई कर। भजन 51 उसके 4 में कहते हैं, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। मित्रों, इसको मैं बजाय किसी मनोवैज्ञानिक के सोफे या कोच पर बैठने से प्रभु यीशु के साथ सोफे पर बैठना चाहूंगा। आजकल अधिकतर वे लोग हैं जो हीन दोष भावना से पीड़ित होते हैं और उपचार के लिए किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि परमेश्वर के वचन में वह उपचार नहीं जो कोई मनोवैज्ञानिक अथवा मनोचिकित्सक के पास है, परंतु यह गलत धारणा है। परमेश्वर के वचन में मानव की सभी समस्याओं के समाधान का उपचार उपलब्ध है। यदि आप किसी ऐसे हीन दोष भावना से पीड़ित हैं अथवा व्यक्तिगत समस्या से ग्रसित हैं, तो प्रभु यीशु के पास जाकर उसकी गद्दी अर्थात सोफा पर बैठकर क्यों नहीं पुकारते, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जांच ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं। मेरे मित्र, हमारी समस्या यह नहीं है कि जब हम बच्चे थे हमारी माताजी ने या माताजी से हमें अधिक प्यार नहीं मिला, पर हम स्वभाव से ही पापी हैं, यह समस्या है। अतः हम परमेश्वर की सवारी उसकी गद्दी या कोच पर बैठकर अपनी समस्या उसे बखान कर दें। अनजाने या अज्ञानता के पाप वे हैं जिन्हें वह व्यक्ति जो करता है पाप नहीं समझकर कर बैठता है। अपनी भूलों का ज्ञान किसे हो सकता है, हे प्रभु मुझे गुप्त दोषों से मुक्त कर। भजनकार भजन 19 के 12 में कहता है, कितना अधिक हमें ईश्वर के समक्ष अंगीकार करना है कि हम सब पापी मानव हैं। यदि कुछ विशेष पाप अंगीकार आपके पास नहीं है तो सिर्फ यही अंगीकार करें कि मैं एक पापी हूं। कुछ लोगों का एक समूह निरंतर प्रार्थना सभा में मिलता था और एक व्यक्ति हमेशा बोलता, प्रभु यदि मैंने कोई पाप किया है तो मुझे क्षमा करें। एक छोटे वाक्य से परेशान होकर किसी दूसरे ने उससे कहा, तुम अपने पाप को ईश्वर के सामने क्यों नहीं बताते? उसने उत्तर दिया, यह तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। अगुए ने कहा, थोड़ा इस पर सोचकर अनुमान क्यों नहीं लगाते? और आपको पता है कि उस व्यक्ति का पहला अनुमान बिल्कुल सही निकला। मित्रों, हमें परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए, चाहे वे छोटी हो या बड़ी हो। यदि किसी जन से अनजाने में जल्दी में या अचानक पाप हो जाए तो ईश्वर ने उसके छुटकारे का प्रावधान किया है। उसने शरण स्थल की स्थापना की है जिसे हम गिनती की पुस्तक 35 अध्याय उसके 11 पद में पाते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए भी एक शरण स्थान बनाया है। मेरे मित्र, उसके पास आपके लिए एक उपाय है। हे मेरे बालकों, मैं यह बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। पहला योना की पत्री 2 अध्याय उसके 1 पद में हम इसे पाते हैं। पौलुस कारण को बताता है और वह सबसे बड़ा पापी था और क्यों उसे अनुग्रह मिला। वह इष्ट निंदक था, कलीसिया का सताने वाला था, हिंसक, परंतु उसके अनुग्रह प्राप्त करने का कारण है कि वह सब कुछ उसने अविश्वास से किया अर्थात अनजाने में किया। हम पहला तीमोथियों के पत्र 1 अध्याय उसके 14 और 15 पद में पढ़ते हैं, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और सब प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। मित्रों, डॉक्टर मैगी की गवाही उनके शब्दों में इस प्रकार से है, जब मैं 14 वर्ष का था तो मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मुझे व्यापार की दुनिया में जाना पड़ा। वहां गलत लोगों की संगति में पड़ गया और 16 वर्ष की आयु में मैं वह सब करने लगा जो 25 वर्ष के पुरुष करते हैं, और इसके लिए क्षमा याचना भी नहीं करता। परंतु वास्तव में मुझे पता नहीं था कि यह इतना बड़ा अपराध है। एक दिन आया जब मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, और उस दिन के पश्चात से जो कुछ भी मैंने पहले किया था उसके लिए मेरे मन में पश्चाताप व अपनी करने के लिए घृणा पैदा हो गई। ईश्वर का धन्यवाद हो कि पाप बलि का प्रावधान है। मसीह मेरे लिए मरा, उसको मैं सब कुछ बता सकता हूँ। मुझे किसी दूसरे की सवारी अर्थात सोफे में बैठने की जरूरत नहीं है तथा उससे सब कुछ बखान करना है। यह उसका काम नहीं है, परंतु निश्चय थी ईश्वर का काम है और मुझे उसको बताना चाहिए। वह मुझे क्षमा कर सकता है अर्थात करता भी है, क्योंकि उसने क्रूस पर मेरे पापों का बोझ उठाकर मुझे आजाद किया है, मुझे छुटकारा दिया है। मित्रों, पाप बलि द्वारा हम अपने आप को ईश्वर के आईने में देखना चाहते हैं। इसके द्वारा हमारे सामने पाप की जागरूकता, हमारी अयोग्यता, परंतु ईश्वर का प्रावधान सभी के सामने आते हैं। जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। भजन संहिता 32 के 5 में हम इसे पाते हैं। यह दोष भावना को दूर करता है। पाप बलि से उसकी स्वयं की कमी भी प्रतीत होती है। भजन संहिता 40 उसके 6 पद में हम पढ़ते हैं, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। मित्रों, यह परमेश्वर का पाप के प्रति पूर्ण संतोष और उसकी क्षमा की ओर संकेत है। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय उसके 19 से 22 पद में हम इसे पाते हैं। और अब आप और मैं सभी पापी जन उसके समक्ष हिया बांध कर आए, क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु हमारा पाप बलि है, यहां तक कि हमारे अनजाने में किए गए पापों के लिए भी वह सक्षम है, अर्थात हमें क्षमा करता है। अनजाने या अज्ञानता के पापों द्वारा हमारा ध्यान परमेश्वर के न्याय तथा मानवता के प्रति उसका सभद्र व्यवहार का स्मरण दिलाता है। परमेश्वर मानव के साथ समदृष्टि अर्थात निष्पक्षता का व्यवहार रखता है। वहां दंड की मात्रा एवं प्रतिफल की मात्रा होगी। पाप बलि में उत्तरदायित्व की मात्रा भी दर्शाई गई है, जैसा हम आगे चलकर विभिन्न लोगों के मध्य में पाएंगे। अब हम आगे देखते हैं याजक के पाप अर्थात पुरोहित के पाप। लय व्यवस्था की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 3 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। मित्रों, पुरोहित का पाप सबसे पहले बताया गया क्योंकि वह अगुआ होता था। यदि वह दोषी है तो उसके लोग भी दोषी होंगे, उसका पाप उनका पाप होगा, जैसा राजा वैसे ही प्रजा। उससे एक बछड़े को लाने के लिए कहा गया है, अर्थात आदेश है, सभी चढ़ाओं में उसकी बलि सर्वश्रेष्ठ होगी। ध्यान दें कि जिस स्तर के व्यक्ति का पाप उसकी है, उसी के अनुसार वह पशु भी जिसकी बलि देनी है। उसके पाप में अंतर नहीं है, पर उसका उत्तरदायित्व बड़ा था। आजकल भी ऐसा ही है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। याकूब के पत्र 4 अध्याय के 17 पद में लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। यह याकूब के पत्र 3 अध्याय उसके 1 पद में मिलता है। प्रिय भाई, क्या आप उपदेशक बनना चाहते हैं? इससे आप अधिक जिम्मेवार ठहरेंगे। क्या आप अकेले गाना गाएंगे? इसमें अधिक जिम्मेवारी है। क्या आप डिकन या कलीसिया के अफसर बनना चाहते हैं या संडे स्कूल के टीचर बनेंगे? तब आपकी अधिक जिम्मेवारी बनेगी। विशेषाधिकार के साथ उत्तरदायित्व जुड़ा होता है और परमेश्वर स्वयं आपको उत्तरदायित्व सौंपेगा। मित्रों, यही बात यहां पर दर्शाई गई है। लोगों के पापों के अनुसार, इसका बेहतर अनुवाद होगा लोगों के पाप करने का कारण। मित्रों, इससे पुरोहित की जिम्मेवारी की ओर संकेत है। वह भी तो एकमात्र मानव है और उसके समक्ष भी सबों के समान परीक्षाएं आती है, क्योंकि विधान ही मनुष्य को महायाजक बना देता है जिसके अंदर दुर्बलताएं हैं। इस बिंदु पर भी मसीह और हमारा महायाजक व हारून के वंशज याजकों में बड़ा अंतर है। इब्रानी 4 के 15 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हम लय व्यवस्था 4 अध्याय के 4 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और वह उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। यह पाप बलि का विधि या विधान है। यहां इसकी तुलना होम बलि से की जा सकती है। हम लय व्यवस्था 4 उसके 5 से 7 पद में आगे पढ़ते हैं, और अभिषिक्त याजक बछड़े के लोहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लोहू में डुबो डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के, और याजक उस लोहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सींगों पर जो मिलाप वाले तंबू में है यहोवा के सामने लगाए। फिर बछड़े के सब लोहू को वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे। यहां पर पर्दे के सामने रक्त का 7 बार छिड़कना परमेश्वर का दोषी के साथ संबंध प्रकट करता है। धूप वेदी के सींगों पर लहू लगाने से दोषी की आराधना विशेषाधिकार में प्रार्थना के स्थान को बताता है। हमारी आराधना का ईश्वर द्वारा स्वीकृति प्रभु यीशु मसीह के खून पर निर्भर करती है। पहला योना 1 के 9 पद में हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मित्रों, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इसे हम इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय के 22 पद में पढ़ते हैं। बचा हुआ रक्त पीतल की बेदी के नीचे हौद में उंडेल दिया जाता था। इससे पापी के विवेक को संतुष्टि और उसके दोष भावना निवृत्त होती थी। अपराध के दोष का उपचार था तथा उसके मन और मस्तिष्क को संतोष प्रदान करता था। मेरे मित्र, यह समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब मसीह आपके अपराध क्षमा करते हैं तो फिर आपको भी क्षमा कर देते हैं। इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उसने हमारे पापों को समुद्र की सतह में डाल दिया है। जितना पूर्व से पश्चिम दूर है उतना दूर फेंक दिया है और अब वह उन्हें स्मरण नहीं करेगा। पाप का प्रश्न समाप्त हुआ, हमारा दोषी मन शांत हुआ। कभी भी यह संकोच नहीं होना चाहिए कि उसने मुझे क्षमा नहीं किया। प्रिय मित्र, उसने मेरे सारे पाप और दोष को दूर किया है। जब आप यीशु मसीह के निकट आते और उसका अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कि वह सचमुच यह करने में समर्थ है। हम लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 8 और 10 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फिर वह पाप बलि के बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती है और जितनी चर्बी उनमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह ऐसे अलग करे जैसे मेल वाले चढ़ावे के बछड़े से अलग किए जाते हैं, और याजक इनको होम बलि की वेदी पर जलाए। मित्रों, यहाँ पाप बलि चढ़ावे की विधि या विधान के पीछे मेल बलि का भी जिक्र है। पाप क्षमा किए गए, संगति बहाल हुई, सेवा पुनः स्थापित हुई, चर्बी को वेदी पर जलाया गया। स्मरण रहे कि चर्बी का मतलब सबसे अच्छे भाग से है। हम 4 अध्याय के 11 और 12 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और उस बछड़े की खाल, पांव, सिर, अतनिया, गोबर और सारा मांस, निदान समूचा बछड़ा छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहां राख डाली जाएगी ले जाकर लकड़ी पर रख कर आग में जलाए। जहां राख डाली जाती है वह वहीं जलाया जाए। मित्रों, इस बिंदु से अन्य चढ़ावों से और इसमें मूलभूत भिन्नता दिख पड़ती है। बछड़े का बचा भाग शिविर के बाहर ले जाकर भस्म किया जाता है। हमारा मानना है कि यह सामान्यतः पाप की भयंकरता पर जोर देता है। यह पशु पाप बलि था, यहाँ समर्पण का कोई विचार नहीं या मसीह के व्यक्तित्व की ओर संकेत भी नहीं है, बल्कि यह मसीह है, पापों का हरने वाला जो हमारे लिए पाप बन गया। इसका गूढ़ अर्थ हमें इब्रानियों की पत्री में मिलता है। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इब्रानियों 13 अध्याय उसके 10 से 14 पद में हम इसे पढ़ते हैं। धर्मशास्त्र के इस भाग पर अच्छे से विचार करें। धर्म कभी भी पवित्र ईश्वर की मनसा को संतोष अथवा उसके दिल की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। केवल क्रूस पर मसीह की मृत्यु ही पापों की क्षमा प्रदान कर सकती है। हम स्वभाव से ही पापी हैं और स्वर्ग के उपयुक्त नहीं हैं। यदि ईश्वर सारे संसार को भी अनंत काल के अंधेरे में ढकेल दे सकता है तब भी स्वर्ग के दूतों का पवित्र पवित्र गान ही होगा। परंतु ईश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमसे इतना अधिक प्रेम किया कि उसने प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया जो हमारे लिए पाप बना। अब अपने पापों की समस्या के समाधान के लिए किसी और मार्ग या तरीके से नहीं पर प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़े। और उस पर भरोसा रखें कि वही केवल आपके पापों से आपको छुटकारा व क्षमा प्रदान करेगा। ऐसा करने में वह समर्थ है। वह आपके मन और आत्मा की तह तक जाकर उनकी आवश्यकता पूर्ति करेगा। केवल वही पापों की क्षमा देता है। पाप से छुटकारा पाने का केवल एक उपाय या समाधान क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह की मृत्यु को पाप बलि के रूप में ग्रहण करना है। यही अर्थ पशु के शेष भाग का शिविर से बाहर जलाने के संकेत से मिलता है। मित्रों, यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यीशु के द्वारा ही हमें उद्धार की प्राप्ति है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए और जगत के पापों के लिए पाप बलि हुए, ताकि हम सब उस बलिदान के द्वारा छुटकारा पाएं। मित्रों, यदि आप यीशु के बलिदान को पाप बलि के रूप में ग्रहण करते हैं तो वह आपको छुटकारा दे सकते हैं। आज हमारे अध्ययन का समय यहीं पर समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि आपको अवश्य ही इस अध्ययन के द्वारा आशीष प्राप्त हुआ है। प्रभु आप सबकी सहायता करें ताकि आप एक सही निर्णय ले सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
प्रभु यीशु प्यारे प्यारे मेरे मन में तू विराजे, प्रभु यीशु प्यारे प्यारे मेरे मन में तू विराजे। अपने प्राण